ओम शांति। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में क्वेश्चन आंसर जो हम चर्चा करेंगे सुनेंगे, अनेक प्रकार के प्रश्न जिंदगी में मन में हलचल करते रहते हैं। जब तक उनका हल नहीं मिलता तो मन में अस्थिरता बनी रहती है। तो ऐसे प्रश्नों से पार ले जाने वाले हमारे ईश्वरीय मंच पर विराजित महान विभूतियां रामनाथ भाई जी, जिनका नाथ है केवल राम ही है, हमेशा एनर्जेटिक मोड में रहते हैं, वो अलर्ट मोड में रहते हैं और कई प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उनकी चलती फिरती एक दर्शनीय मूर्ति के रूप से ही अनुभव हो जाते हैं। तो ऐसे महान विभूति का हम आज के सत्र में स्वागत करते हैं। हमारे इंदिरा बहन जी, जो इंद्रप्रस्थ की परी की तरह लगती हैं, सबको इंद्रलोक की सैर कराने वाले, हमेशा सेवाओं में व्यस्त होते हुए भी हल्के रहने वाले हर्षित मूर्त इंदिरा बहन जी का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे सुमन बहन जी हैं, जो विदेशी कल्चर को भी ब्राह्मण कल्चर में परिवर्तन करने के लिए गत 35 वर्षों से लंदन में सेवा दे रहे हैं। अनेक आत्माओं को बाबा का बच्चा बनाकर विदेश से बनाकर इंडिया में लाना बहुत बड़ी सेवा है। उनके रहन सहन, खान पीन, चलना उठना बैठना सारा परिवर्तन करना, ऐसी बाबा की छत्रछाया में रहकर सेवाओं की खान हमारी सुमन बहन, जो हमेशा खुशबूदार फूल की तरह दृष्टिगोचर होते हैं और अनेक आत्माओं को दिव्य गुणों की खुशबू से सुशोभित करते रहते हैं। तो ऐसे सुमन बहन जी का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे गायत्री बहन जी, जिनका नाम लेने से गायत्री महामंत्र से अनेक प्रकार के संताप दूर हो जाते हैं, तो ऐसे गायत्री बहन की छत्रछाया में पलने वाली आत्माएं कुलावा सेवा केंद्र के भाई बहनों का भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। गंगा जी के साथ जमुना नेहा बहन जी अभी उन पर आ रहे हैं। नेहा बहन जी, जो हमेशा हरे को जब निहारते हैं तो माला माल हो जाते हैं सभी, तो ऐसे नेहा बहन जी का भी हम स्वागत करते हैं। तो अभी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में, वैसे तो बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में प्रश्नों के उत्तर मिलते ही हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर से सुने तो मिल जाते हैं, लेकिन क्या होता है, मन हमारा अब्सेंट हो जाता है। अब्सेंट मोड पर रहते हैं तो प्रश्नों का उत्तर हमारे मन से निकल जाता है। तो फिर भी बाबा हमारे ऊपर कृपा करते हैं कि ऐसी महान विभूतियों को सामने रखकर उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बाबा हमारे ऊपर कृपा करते हैं। तो आज हम इस प्रश्नोत्तर के सत्र में पहला प्रश्न आदरणीय रामनाथ भाई जी से, जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, उस समय शक्तियों को कैसे यूज करें, समझ नहीं आता, याद ही नहीं आता है कौन सी शक्ति कब यूज करनी है और कैसे यूज करनी है। रामनाथ भाई जी,
जैसे मार्केट में जाओ, कहीं भी जाओ, जेब में पैसे रहेगा तो सामान ले सकते हो, है ना, दिखाई तो बहुत कुछ दिखाई देता है, ये लेना चाहिए, लेकिन जेब खाली है तो क्या करेंगे। ऐसे इस संसार में हर कदम में परिस्थितियां, समस्याएं, विघ्न है, लेकिन हमारे जेब में, आत्मा में सर्वशक्तियां चाहिए। तो वो सर्वशक्तियां कहां से लाएंगे, फिर भी किसी के पास पैसे जेब में नहीं बैंक में है तो काम में आएगा? तो नॉलेज मस्ट बी, पावर मस्ट बी अवेलेबल। तो उसके लिए क्या करें, वो शक्ति कैसा, अमृत सवेरे और शाम जब योग में बैठते हो तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आत्मा समझ मुझे याद करो। कौन मैं? कौन? सर्वशक्तिवान। कौन सी शक्ति है उसके पास? वो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुखहरता सुख करता है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, भाग्य विधाता है, दिव्य बुद्धि दाता है। आठ शक्तियां हैं। इन आठों शक्तियों पर अगर आप अधिकार प्राप्त करते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं। तो वो आत्मा अष्ट रत्नों में आता है, सत्युग के विश्व महाराजन बनता है। तो वो शक्ति अगर अमृत वेले शाम को योग में बैठते हो, आत्मा समझ के शिव बाबा को याद करते हो, शक्ति भरते हो। तो सामने कोई बहुत गुस्सा करता है, हाँ करता है, तो आपको शक्ति है, चुप रहते हो, सहन करना है, बोलने दो, क्या होगा, आग तो नहीं लगेंगी, क्योंकि शक्ति होने के कारण अपने आप को समझाते हो, चुप रहते हो। अगर वो शक्ति नहीं है तो सहन नहीं कर सकते। फिर कोई गलत दिखाई देता है, कोई और कुछ दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो वो औरों को सुनाना चाहिए, ये आदत बनी है। तो कौन समा सकता है? जिसके पास ये शक्ति है। तो सुनते हुए लेट गो, इनको नहीं सुनाना, कोई फायदा नहीं, समा लेता है। तो वो शक्ति कहां होंगी? रोज सवेरे शाम। आत्मा जैसे बैटरी को, मोबाइल को चार्ज करते हो तो काम में आता है। मोबाइल है, चार्ज नहीं किया तो काम में नहीं आएगा। तो यहां भी रोज चार्ज करने के बाद सवेरे शाम, तो शक्तियां जागृत रहती है, परिस्थिति आई तुरंत यूज करता अपने आप। नहीं तो ज्ञान है, गुस्सा नहीं करना चाहिए, पता है ज्ञान सब कुछ नहीं करता है, पावर चाहिए। तो नाले गाड़ी को लाइट है, दिखाई दे रहा है वो गलत आ रहा है, लेकिन ब्रेक काम नहीं करता है तो टकराएगा, दिखाई देने के बाद भी टकराएगा। ब्रेक है तो रोकता है, मोड़ता है। तो इसके लिए अपने जीवन में कहीं कहीं अपने को मोड़ना पड़ता है, कहीं कहीं अपने को ब्रेक लगा के रोकना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो ये पावर वो सर्वशक्तिवान शिव बाबा देता है। समझ में आया? ओम शांति।
तो सर्वशक्तिवान तो सर्वशक्तियों का स्रोत है, अगर उससे निरंतर जुड़े रहेंगे तो सारी शक्तियां हमारे पास जमा होंगी और समय पर उनको यूज कर सकेंगे। अब अगला प्रश्न है इंद्राबेन जी से। बाबा का बनने के बाद कोई श्रीमत का उल्लंघन हुआ है तो क्या प्रायश्चित करना है? गलती छोटी या बड़ी हो तो कैसे प्रायश्चित करें?
ओम शांति। प्रायश्चित शब्द अपने आप में दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, संधि है, प्राय और चित। प्राय मतलब क्या होता है? ऑफन, फ्रिक्वेंटली, ऐसे ही होता है ना। और चित्त माना क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड। तो जब हमसे गलतियां हो जाती है तो हमें क्या करना चाहिए? उस गलती को ऐसे ही रखने ही देना है चित्त में। जो गलती हुई तो पहले तो कॉन्शियस माइंड में है, पता है, और फिर धीरे धीरे कहां चली जाएगी? सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो वहां पे वो क्या करेगी? प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे मैंने खाना खाया, पेट में गया, जो योग्य है बॉडी के लिए वो तो गया, लेकिन जो योग्य नहीं था वो भी कुछ चला गया है। तो वो जाके क्या करेगा? उसको जो योग्य खाना खाया था, उचित खाया था, उसको भी जाके क्या कर देगा? वो बिगाड़ देगा। ऐसे कुछ कर्म हमने अच्छे भी किए होंगे, परंतु कुछ मेरे से गलती भी हो गई है, लेकिन फिर मैंने उसको अंदर ही रख दिया तो वो क्या करेगा? अच्छे वालों को भी खराब करेगा। और इसलिए बार बार अपने भीतर झांक कर उसको कॉन्शियस माइंड में ला कर परमात्मा प्रभु के सामने उसको खोले कि बाबा मेरे से ये गलती हो गई है। और अभी अभी पर्युषण पर्व पूरा हुआ था थोड़े समय पहले, क्या है उसका मुख्य संदेश पर्युषण पर्व का? मिच्छामि दुखड़म। तो क्षमा याचना कर लेने का। डॉक्टर भी क्या करता है, जैसे कैंसर या कुछ हो गया है, मतलब जो शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, कहता है इसका ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। तो जब भी कोई गलती हुई है, चित्त में जाकर बैठ गई है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देगी। और खुद होकर अंदर जाएं, जो गलती है उसको ऊपर लेके आए और बाबा को बताएं, क्षमा याचना करें, जिसके साथ हुई है उससे भी क्षमा याचना करें। कई बार होता है कि क्षमा देने की बात है और कई बार होता है क्षमा लेने की बात है। तो इसलिए उस गलती पर भी विचार करना होता है कि गलती किस टाइप की हुई है, मुझे यहाँ क्षमा करने की जरूरत है या क्षमा लेने की जरूरत है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो चले गया उसको कॉन्शियस माइंड में लाना, और फिर जो व्यक्ति प्रॉपर है, सबसे बड़ा तो भगवान है, वो कॉन्फिडेंशियल रखता है अपनी बातें, लेकिन उसके नेक्स्ट जो हमारे यज्ञ में सीनियर्स हैं, जिन्होंने बहुत तपस्या की हुई है, जिन पर हमारा विश्वास है, जिनके सामने हम बातें खोलेंगे वो कहीं और नहीं करेंगे, उनके सामने खोल दो। बाबा हमेशा कहते हैं उल्टी कहाँ की जाती है, ऐसे उल्टी यहाँ पे जो वॉमिटिंग आती है तो बेसिन में जाके करोगे ना, प्रॉपर जगह पे। इधर उधर करोगे तो क्या करोगे, दूसरों के लिए भी और प्रॉब्लम खड़ी करोगे और दूसरे भी आपके लिए पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। इतना बड़ा हो गया उसको समझ तक नहीं है, ऐसे रास्ते में करनी होती, और चलो हो गई तो पोछा भी नहीं, तो आपके लिए क्या क्या बोलेगा ना। ऐसे ये गलतियां भी सबके सामने उल्लेख नहीं करना होता है, कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति के पास ही, क्योंकि जब तक बाहर नहीं निकलेगा वो चित्त में खलबली मचाते रहेगा। तो बाबा के पास प्रायश्चित करना है, और जो कहा कि कैसे करें, बताओ सच्चे दिल से कि मेरे से गलती हुई है और ये गलती मेरी दोबारा न हो, इसके लिए मैं अभी दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ। तो फिर बाबा की हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। बाबा मुरली में हमेशा कहते, सर्जन को बीमारी बताओगे नहीं तो सर्जन आपको ठीक कैसे करेगा। तो बाबा को बताएंगे नहीं तो अंदर से बाहर निकलेगी कैसी और चित्त साफ कैसे होगा, तो बताना बहुत जरूरी है। ओम शांति।
तो प्रायश्चित करने के लिए सुना कि रियलाइजेशन करना बड़ा जरूरी है, और रियलाइजेशन का संकल्प आया तो मदद आवश्यक रूप से मिलेगी, लेकिन सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। सच्चाई सफाई से बाबा के आगे हम रख देते हैं, या कोई ऐसी आत्माएं जो निमित्त हैं, जो हमारी समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती हैं, तो उनके सामने अगर हम अपना प्रश्न रखें तो बाबा किसी न किसी रूप से हमारे हल्का कर देगा। नेक्स्ट प्रश्न है आदरणीय सुमन बहन जी से। हमने सुना है कि हमने माना सभी ने कि ब्रह्मा बाबा के जो महावाक्य उच्चारित करते थे ब्रह्मा बाबा, मम्मा उसी स्वरूप में टिक जाती थी, लेकिन वो हम नहीं कर पाते, ऐसा क्यों?
आपने सबने ये स्टोरी शायद सुनी होगी। एक बार दीदी मनमोहिनी बाबा के साथ बैठे थे, कुछ गिफ्ट्स बांटे जा रहे थे सबको, और बीच में दीदी को कुछ काम याद आया, तो वो थोड़ा किसी को डायरेक्शन दिया उन्होंने उस काम के लिए, और बाबा का फेस थोड़ा चेंज हो गया। तो बाद में दीदी बाबा के पास गई और दीदी ने बाबा को पूछा, बाबा आपका फेस थोड़ा चेंज हो गया था, तो बाबा ने कहा मम्मा मम्मा क्यों बनी, क्योंकि उनका टोटल फोकस बाबा की शिक्षाओं पर था, कॉन्सेंट्रेशन। यदि हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ही हमारे में वो फुल एब्जॉर्प्शन नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी एक डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है जो चीज़ें हमें ब्राह्मण लाइफ में या इस आध्यात्मिक जीवन में, बड़ी चीज़ें हमें इतना रुकावट नहीं डालती हैं हमारे लिए, लेकिन छोटे अलबेलेपन से हम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ तो पहचान में आ जाती है। कहते हैं ना कि हाथी के कान में चींटी जब जाती है तो ही भी वो गिरता है। तो जानकी दादी ने हम लोगों को, लंदन की बहनों को, इस चीज पर बहुत उन्होंने ध्यान खिंचवाया है कि एक्चुअली हमारी हार छोटी चीजों से होती है, बड़ी चीजों से नहीं। तो ठीक इसी तरह अगर हमें मम्मा जैसे अब्सॉर्ब करना है तो डिस्ट्रैक्शन छोटा सा अवगुण है और उसमें इतना नुकसान भी नहीं लगता। डिस्ट्रैक्शन को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, हमारा ध्यान चला जाता है और कहीं। तो ये एक संस्कार बन गया है हमारा। हम और जो कॉन्सेंट्रेशन है या डिस्ट्रैक्शन का जो ऑपोजिट है वो दिन भर हमारे कई कर्मों के द्वारा भी हो सकता है। वो सिर्फ योग में बैठ के कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड दिन भर हमारी पूरी एक्टिविटी में होता है, उसमें डेवलप होता है। समझो कई बार हम दादी के पास अगर हम कभी भी 8 बजे के पहले उनको कुछ कारोबार का प्रश्न पूछने के लिए जाते थे, दादी का एक ही जवाब होता था, बाद में। और जब वो खाना खाते थे कई बार हमें लगता था कि दादी खाने के टाइम पर थोड़ा फ्री होंगे, कोई और आसपास नहीं है तो हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं अपने कारोबार के रिलेटेड। उसमें भी दादी बहुत डिसिप्लिन से हमें कहती थी ठहरो बैठो, ये उनके शब्द हैं, बाद में ठहरो बैठ जाओ। और जिस समय दादी खाना खाते थे ना, उससे भी उनको खाना खाते देखते हुए उससे भी हमें शक्ति मिलती थी। और हमें एक चीज याद है, एक एक्सपीरियंस। एक बहुत बड़ी लेखक थी और वो कई महीनों से वो डिप्रेशन में थी। बाबा की बच्ची थी लेकिन डिप्रेशन में चली गई थी, और उसने कई तरीके अपनाए अपने आप को डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। तो फिर दादी ने उसको लंदन बुलाया, वो दूसरे देश में रहती थे, दादी ने उसको लंदन बुलाया तो वो खास आए। तो जब वो पहुंची, उस समय भोजन का टाइम था, तो दादी ने मैसेज छोड़ा हुआ था रिसेप्शन वालों के साथ कि जैसे ही ये बहन पहुंचे तुरंत मेरे पास भेजना, मैं कुछ भी कर रही हूं तुरंत मुझे उसको मेरे पास भेजना। तो दादी खाना खा रही थी उस वक्त, तो वो बहन आई तो दादी ने उसको बिठाया, कहा बैठो मैं पूरा करती हूं। तो बाद में उस बहन ने सुनाया कि दादी को, केवल दादी को खाते खाते जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया दादी का, उससे उनकी डिप्रेशन मिट गई। क्योंकि दादी जब खाना खाती थी ना, मैं थोड़ा नकल करके दिखाऊंगी, रियली दादी ऐसे लगता था कि आत्मा एक आत्मा इस शरीर में बैठा है और ये शरीर एक मशीन है। और दादी एकदम कंसंट्रेशन से खाते थे और ऐसे जस्ट मुंह उनका हिल रहा है। अभी भी वो एकदम क्लियर है हमारे लिए। दादी जब खाना खाते थे इतना नो डिस्ट्रैक्शन, उनका कंसंट्रेशन एकदम था। तो मैं समझती हूँ शॉर्ट में, यदि हम अपने को प्रेजेंट मोमेंट में रखें और उसमें वर्तमान मोमेंट में हम रखें और हमारा अटेंशन इधर उधर बटे नहीं, तो हम मम्मा जैसे अब्सॉर्ब कर सकते हैं। और आई डोंट नो इंडिया में क्या ऐसे है या नहीं, लेकिन विदेश में एक बहुत बड़ा ट्रेंड है जो बहुत फैला हुआ है और बहुत पॉपुलर हो गया है, और वो है माइंडफुलनेस। आई डोंट नो इंडिया में माइंडफुलनेस का है या नहीं। एक मेडिटेशन का स्टाइल है माइंडफुलनेस, तो वो विदेश में इतना क्यों इतना उसका फैलाव हो गया है, क्योंकि माइंडफुलनेस में एक ही ये बात सिखाते हैं कि जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें आपकी 100% अवेयरनेस हो, और उससे लोगों को इतना फायदा मिल रहा है। बाबा हमें उससे कहीं अधिक सिखाते हैं, लेकिन उनको फर्स्ट स्टेप से सिर्फ कंसंट्रेशन से इतना बल मिल रहा है। तो इमेजिन अगर उसके साथ आप बाबा का भी, बाबा की शक्ति भी मिल जाए तो कितना लाभ मिलेगा।
तो बाबा जी से कहते हैं हर समय सुजाग रहना है, हर समय जागरूक रहना है। तो छोटी छोटी नियम मर्यादाएं जो हम भंग हो जाती हैं और धीरे धीरे वो फिर बड़ा रूप ले लेती हैं और मन फिर बोझिल हो जाता है, इसलिए हम फिर फॉलो फादर या फॉलो मदर से दूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल, आदत होगी पक्की उसका छूटना मुश्किल। इसलिए जीवन में, ब्राह्मण जीवन में अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व है। अमृत वेले से रात्रि तक छोटी छोटी मर्यादाएं हैं, अगर उन पर थोड़ा थोड़ा भी फोकस करें तो हम मम्मा बाबा के आसपास तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आदरणीय रामनाथ भाई जी से, ये 5000 वर्ष का ड्रामा ही क्यों होता है? दुनिया में अभी भी 10-20 हजार वर्ष के की वस्तुओं की खोज हो रही है, तो ये ड्रामा 5000 साल का कैसे हो सकता है? उसका खोज जारी है, मतलब वस्तुओं 10-20 हजार के है, लाखों करोड़ों वर्ष भी है ना, 10-20 हजार ही बताए
तो कितने हजार वर्ष का होना चाहिए। देखो सिंपल उदाहरण है, ये फैन है, 3 ब्लेड है, एक चक्कर घूमने के लिए 5000, तो गिनता रहता, गिनती करो हजारों वर्ष होगा। तो दिस इज घड़ी भी, देखो 24 घंटे का एक चक्कर है, अपने सुविधा के लिए हमने 12 घंटे का चक्कर बनाया, तो अपनी सुविधा के लिए हमने 5000 का, 5000 के बाद एक सेकंड भी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस है, गिनती करते रहो। तो उन्होंने लाखों अरबों वर्ष कहा, गलत नहीं सही है, लेकिन एक चक्कर के लिए 5000, 1 राउंड, जैसे घड़ी 24 घंटे का एक राउंड, हमने अपनी सुविधा के लिए 12 घंटा किया तो गलत है, तो सुविधा के अनुसार। तो फैन भी ऐसे एक चक्कर घूमता है सिर्फ 3 ब्लेड, तो 5000 ऐसे कितनी दफा घूमता है गिनती करो। तब कहा अनंत लोग कहते हैं, चलता ही रहता है, अनगिनित, सही है गलत नहीं है, तो इसलिए 5000 का कोई मतलब नहीं है। यस, तो उसका गिनती करते चलो, लेकिन ये याद रखो 3 ब्लेड एक चक्कर घूमने के लिए 5000, ऐसे अनलिमिटेड गिनती नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, कन्विंस, ओम शांति। हाँ, आपने घड़ी को 24 घंटे के बदले 12 घंटे का बनाया, अपनी सुविधा के अनुसार अपने को बना देते हैं हम, तो अपनी सुविधा के अनुसार हमने 5000 का एक चक्कर बनाया। ओके,
तो ये प्रश्न 5000 वर्ष, अगर बाबा ने 10000 वर्ष बताया होता तब भी प्रश्न यही रहता, कि 10,000 वर्ष क्यों, अगर बाबा 20 वर्ष तभी प्रश्न था 20 क्यों। तो भाई जी ने स्पष्ट रूप से हमको इसकी जानकारी दी। नेक्स्ट प्रश्न है इंद्रबेन जी से, बार बार जेलसी डिस्टर्ब करती है, क्या करें कैसे करें, इस विचार को स्टॉप कैसे करें।
जेलसी का सिंपल अर्थ होता है कि मेरे बराबरी में कोई है और मेरे से आगे निकल गया है, तो जेलसी का रूट है कंपैरिजन। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना बंद कर दे। बाबा का ज्ञान इतना अच्छा है, बाबा कहते हैं हर आत्मा, ये 5,000 की बात चली ना, इस 5,000 वर्ष के ड्रामा में हर आत्मा अपने आप में यूनिक है, नो कंपैरिजन। तो जब हर आत्मा यूनिक है तो क्यों हम साथ वाले के साथ अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। तो अगर जड़ को ही खत्म कर दें, जैसे वो कहते हैं ना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अब कंपैरिजन जो जड़ है जेलसी की उसको ही करना बंद कर दो तो जेलसी नहीं हो सकती है। और कंपैरिजन न करें, कहें ये हमारे से छूटता नहीं है, तो ये अगर छूटता नहीं है तो फिर अपने आप से कंपेयर कीजिए कि कल क्या था मैं, आज मैं उससे कितना आगे निकलूं या निकल सकता हूं। तो अपने आप से, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, क्योंकि ये सब एनर्जी है, चाहे गुस्सा कर रहे हो वो भी एनर्जी है, जलसी कर रहे हो वो भी एनर्जी है, प्रेम कर रहे हो वो भी एनर्जी है, सहयोग दे रहे हैं वो भी एनर्जी है। तो एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसकी दिशा बदली जाती है। तो जैसे अभी थोड़े दिन पहले गणपति बाप्पा मोरिया, और आपने भी कल अच्छा डांस किया, तो 10 दिनों का वो पर्व जिसकी कहानी बताते हैं ना कि गणपति की उत्पत्ति कैसे हुई, कि माँ पार्वती ने तो उसको तैयार किया लेकिन शिव जी ने आके गला काट दिया। लेकिन गला काटा उसको किसी ने हत्या नहीं बोला। आज के जमाने में कोई किसी का गला धड़ से अलग कर दे तो आप क्या नाम देंगे उसको, हत्या बोल देंगे ना, और क्या लगा सकते हो दूसरा फिर। लेकिन वहां पे हत्या शब्द यूज नहीं हुआ है, वहां पे वो एक शीश हटा के दूसरा शीश लगाया गया। अर्थात क्या है, वो बुद्धि जो थी वो मटेरियलिस्टिक थी, और परमा और इसीलिए मटेरियलिस्टिक बुद्धि, भौतिकवादी बुद्धि परमात्मा को पहचान नहीं पा रही थी। शिव जी को कहा ना, जानता नहीं था तभी तो इतना डिबेट किया उसके साथ। तो परमात्मा समझ गए कि इसकी बुद्धि जब तक इसमें दिव्यता नहीं आएगी तब तक ये नहीं पहचानेगा, तो डिवाइन इंटेलेक्ट वाला सिर लगा दिया। मैंने क्या किया, सिर तो दिया ना, बिना सिर का थोड़ी रखा उसको। तो सिर्फ दिशा चेंज की जाती है, पहले मटेरियलिस्टिक बुद्धि थी उसको डिवाइन बना दिया। ऐसे ही कंपैरिजन करने की आदत पड़ ही गई है, जबकि संसार चक्र का ज्ञान मुझे कहता है नो टू सोल्स आर सेम, यूनिक है। तो फिर अपने आप से कंपेयर करो, कंपेयर वाले गुण को यूज करना ही है, तो अपने आप से कंपेयर करो कि बाबा के हम बने हैं, स्पिरिचुअलिटी लाइफ में ला रहे हैं, तो कल जो मेरी स्टेज थी आज उससे आगे बढ़ी है या नहीं। तो अपने आप से करके बहुत आगे निकल जाइए। यही तो है कि हम पहले देवता थे, फिर सीढ़ी उतरते उतरते शूद्र बन गए, वापस सीढ़ी चढ़ना शुरू किया। हर दिन कंपेयर करो मैं शूद्र से आगे कितना ज्यादा हुआ हूं, तो अपने आप जेलसी को कोई स्थान ही नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से हम जेलसी से मुक्त हो सकते हैं।
तो जिसको ये ईर्ष्या का प्रश्न है वो कल ईर्ष्या इधर ही छोड़ दे और अपनी बुद्धि में ईश्वरीय ज्ञान भर के जाएगा, तो ईर्ष्या यहीं रह जाएगी, यहीं समाप्त हो जाएगी। तो कंपैरिजन की आदत जो है ये बड़ी खराब है, अगर कंपैरिजन करना है तो अपने आप से कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट प्रश्न है सुमन बहन जी से, देवता बनने का आधार है पवित्रता, तो अन्य धर्मों के संस्थापक और अनुयायी जैसे मोहम्मद पैगंबर जीसस क्राइस्ट अब्राहम या फिर कई संत जो विशुद्ध आहार लेते हैं, तो वे आत्मा में देवता नहीं बनेंगे, सतयुग में नहीं आएंगे क्या? माना इनकी बेहद की भावना कि सभी को स्वर्ग में लेके चलना है।
प्यूरिटी की मेन बात है ना, प्यूरिटी भी फिजिकल प्यूरिटी और स्पिरिचुअल प्यूरिटी में फर्क है। और दूसरा एक है लिमिटेड और अनलिमिटेड। फर्क ये है कि जो देवी आत्माएं हैं उनकी बेहद की बुद्धि है, बहुत बड़ी बुद्धि है, जो पूरे झाड़ को समझती है, देखती है, सबको इंक्लूड करती है। लेकिन जो अन्य धर्म वाले हैं वो केवल अपने धर्म वालों का सोचते हैं। तो लिमिटेड और अनलिमिटेड, इसमें ही मेन डिफरेंस है। एक बार एक इंटरव्यू में किसी ने दादी जानकी को पूछा, बाहर का इंटरव्यू था, तो उन्होंने दादी से ये सवाल किया कि देखो महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे बहुत बहुत महान आत्माएं रही हैं जिन्होंने विश्व के लिए बहुत कुछ किया है, उनके और वो जैसे लीडर्स और आपके यहाँ जो ब्रह्मा बाबा हैं या आपके जो यहाँ दादियां हैं, फर्क क्या है? वो भी तो महान आत्माएं हैं, वो भी तो महान कार्य कर रहे हैं, वो भी महात्मा गांधी ने कितने मिलियंस पर प्रभाव डाला, कितना बड़ा काम किया। तो दादी ने बहुत वंडरफुल और शॉर्ट आंसर दिया। दादी ने कहा कि महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा और अच्छा कार्य किया, लेकिन उन्होंने अपने जैसे कितनों को बनाया? अपने जैसे कितनों को बनाया? कितने महात्मा गांधी बने? एक ही था ना। लेकिन यहाँ बाबा पूरी संप्रदाय बना रहे हैं, एक एक को एक सॉवरेन बना रहे हैं, एक देवता बना रहे हैं। तो फर्क ये है।
तो प्रश्न सुना, यहाँ और संसार की तुलना में यहाँ भी जब बड़े बड़े संत आते थे, नेताएं आते थे, तो उनके मुख से भी निकलता था कि यहाँ दादियाँ यहाँ लीडर तैयार करती हैं सभी को, यहाँ कोई कार्यकर्ता वर्कर नहीं है, सभी लीडर की तरह रहते हैं, तो यहाँ सब आपसमान बनाने की भावना है। संसार में तो वो आपसमान नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ जैसे संसार में गद्दी का सिस्टम होता है, यहाँ गद्दी का सिस्टम नहीं है, सब इक्वल सिस्टम है। तो यहाँ वसुधैव कुटुंबकों की वास्तव में असली वास्तविक भावना यहाँ दृष्टिगोचर होती है, इसलिए वो आत्माएं उनकी पवित्रता और यहाँ की पवित्रता में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ भगवान की आज्ञा के ऊपर चलते हैं, वो भगवान की आज्ञा के ऊपर नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है रामनाथ भाई जी से। बेहद के यज्ञ की सेवा में धन से कैसे सेवा करें? सिर्फ धन दे या कोई भंडारी की सामग्री देवे? केवल धन सेवा में लगावें? इन दो सेवा में क्या अंतर है? माना एक है धन भंडारी में लगाना या सेवा में लगाना, सही तरीका हमें बता दो। धन भोग में कैसे लगता है?
ती ऐसे सेवा तो बहुत कुछ है, तन से है, मन से है, धन से है, संबंधों से है। तो यहां प्रश्न पूछा धन के बाद, तो धन की सेवा करो। जिसके पास धन है, किसके पास तन अच्छा है, वो तन से सेवा करता है। किसके पास तन ठीक नहीं, धन भी नहीं है, मन अच्छा है, तो मन से करता है। तो बाबा ने तीनों व्यवस्था दिया। अभी धन की व्यवस्था ऐसी है कि धन अगर आपके पास है, बाबा ने कहा कि ऐसे सेंटर खोलो, क्यों कि वहां जो आएंगे, जितने लोगों को ज्ञान मिलेगा कि बहुत आत्माओं का उद्धार होगा, तो बहुत आत्माओं के आपको आशीर्वाद मिलेंगे, बहुत आत्माओं का कल्याण होगा। अगर किसी को खाना दिया शाम को फिर भूख लगेंगी, किसी को आपने पैसा दिया तो उसका दुरुपयोग भी हो सकता है, और किसी में तो सबसे पहले धन की सेवा, अगर धन है तो सेंटर खोलो। दूसरा, अगर आपको कुछ मदद करना है तो कहीं सेंटर है, किधर सेंटर में कोई वस्तु चाहिए, कोई चित्र लगाना है, कोई सोफा बनाना है, और कुछ है, कुछ साधन ला के दे दो जो सेवा में लगे, उतना भी नहीं थोड़ा कुछ है, तो हर जगह पर भंडारी होती है, उस भंडारे में डालो, और डालते समय ये याद रहे शिव बाबा ये आपकी सेवा के लिए, क्योंकि शिव बाबा ने वादा किया है भगवान के नाम से कुछ भी करते हो एक का पदम गुना मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को, जैसे मंदिरों में इसने 1,00,000 रुपए दिया, इसने 10,00,000 रुपए दिया, नाम होता है, तो नाम के लिए किया आपने तो कमा, नाम मिला, कमाया, खाया, खत्म। तो ये गुप्त दान, इस हाथ से दिया हुआ इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, गुप्त दान का पुण्य है, महत्व है। तो चुपचाप अगर आपके पास थोड़ा कुछ है भंडारे में डाल दो, शिव बाबा ये आपकी सेवा, आपका है। उससे अगर आपको सेंटर में आने के बाद अगर आप पूछेंगे, आप कहेंगे भाई जी आप इधर कैसे बैठे, हमारे साथ इधर बैठना चाहता, उसी सेवा से हम इधर बैठा हूं, इसी सेवा से। तो बॉम्बे में आज से 50 साल पहले हम जमीन पर बैठते थे, कारपेट प्लास्टिक का, तो पाव दर्द करता था, मैं दो दो नैपकिन लेके आता था, पाव के नीचे डाल के बैठ जाता था, छोटा सा जगह था, लेकिन मेरे बाजू में दूसरा भाई बैठता है उसको भी पाव दर्द करता है, मैं अच्छी तरह से बैठता हूं, 2 मिनट के बाद वो पाव हिलाता है, मुझे भी हिला देता है, अब मैं उसके लिए क्या करूं और नैपकिन लेके आऊं। और उस सेंटर में मैं रोज आने वाला नहीं था, कभी कभी आता था, तो विचार आया, छोटी सी बहन मुरली सुना रही थी, कुछ सेवा करना चाहिए। तो हमने कहा बहन जी कितना भी खर्चा हो यहां गद्दी या फॉर्म डालो। तो उन्होंने कहा मैं दीदी को बताती हूं। 2 दिन के अंदर देखा वहां गद्दी फॉर्म डाल दिया उन्होंने, और तीसरा दिन ही मुझे कहा भाई जी आपको तो मधुबन जाना चाहिए। हमने कहा नहीं मैं बहुत बिजी हूं। तो बड़ी बहन जी आई, कहते आप 1-2 दिन के लिए जाओ, एक बहन टीचर जाने वाली है उनको छोड़ो भी और आप भी जाके आओ। और आया मैं मधुबन में, नहीं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मधुबन में आके कभी सेवा भी कर सकता, हमने कभी किया भी नहीं है। पहली दफा ही 8 महीना रहा, 8 महीना जो एक दिन भी निकल नहीं सकता। तब कहते हैं निस्वार्थ, मैंने मेरे लिए नहीं किया, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो भगवान छप्पड़ फाड़ के देता है, अपने दिल में बिठा देता है, तब का पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाता है। लेकिन निस्वार्थ, अभी मैं मेरे लेके आता था, दूसरों को भी सुख मिलना चाहिए, तो मेरे लिए नहीं किया। तो कोई भी सेवा करते हो मैं मेरा नाम मेरे लिए करते हो, स्वार्थ होगा, एक का एक गुना मिलता है। तो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो भगवान तुरंत पदम गुना देता है, ये सेवा है।
तो जिसको 8 महीने मधुबन में रहना है, मेथड सुन लिया सभी ने,
ऐसे निस्वार्थ सेवा करो
तो भगवान, अगर उससे ज्यादा रहना तो दीदी के कॉन्टेक्ट में रहना, ज्यादा भेज देंगे आपको इधर। अभी सुन लिया उन्होंने, निस्वार्थ भाव आ जाएगा।
कहते मैं बॉम्बे जाऊंगी नहीं, आए रहूंगी। हाँ रह सकते हो, लेकिन निस्वार्थ सेवा करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं, निस्वार्थ सेवा करेंगे तो भगवान बिठा लेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है इंदिरा बहन जी से। चलो पहले प्रेम से 2 घड़ी बाबा को याद कर लेते हैं।
प्रभु
और एक बात है, पैसे की बात आई, अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया क्या करना चाहिए, तो 4 भाग करना चाहिए। 25 रुपया आप अपने लिए यूज कीजिए, स्वयं के कंफर्ट के लिए। 25 रुपया आए वेले के लिए बैंक में रखिए, कभी मांगना ना पड़े। 25 रुपया आप माँ बाप की, जिन्होंने आपको बड़ा किया, उनकी सेवा में लगा दीजिए। 25 रुपया ईश्वरीय भविष्य के लिए ईश्वरीय सेवा में लगाइए। 4 हिस्से करो। धन अगर है, क्या करूं मैं, कैसे यूज करूं संसार में, तो 4 भाग। परिवार, जिस माँ बाप ने हमको बड़ा किया, उनकी भी सेवा करना जरूरी है। स्वयं भी नीट क्लीन साफ स्वच्छ रहना जरूरी है। भविष्य के लिए कभी किसी से मांगना नहीं पड़े, उसके लिए भी 25 रुपया बैंक में रख दो। और 25 रुपया भविष्य भगवान को नहीं चाहिए, आपके लिए ही। तो एक का पदम गुना बना के लेगा भाग्य बनाने के लिए, तो वो भी ईश्वरीय सेवा में लगाइए। ये व्यवस्था है।
नेक्स्ट प्रश्न इंद्राबेन जी से, 2 प्रश्न है, मिलते जुलते हैं। ज्ञान में चलते चलते अवस्था नीचे ऊपर, ऊपर भी जाती नीचे भी, निराशा आ जाती है कभी कभी, आलस्यपन छा जाता है, उसके लिए क्या उपाय है, क्या पुरुषार्थ करें जो अवस्था अचल अडोल हो जाए, पुरुषार्थ तीव्र गति से हो। और साथ में जुड़ा हुआ प्रश्न, योग का मतलब क्या है, नेगेटिव विचार बहुत आते हैं और क्यों आते हैं।
जब हम ज्ञान में नहीं चलते थे तो हम शूद्र कहलाते हैं, और जब ज्ञान में आते हैं तो हम क्या कहलाते हैं। अंतर क्या है शूद्र में और ब्राह्मण में, क्या अंतर है? शूद्र माना बॉडी कॉन्शियस वाली जीवन, और ब्राह्मण माना सोल कॉन्शियस वाली जीवन। होनी चाहिए, पर कितनी होती है वो समझ में आ रही बात। होना ब्राह्मण माना सोल कॉन्शियस वाली लाइफ जीना, परंतु लंबे समय का अभ्यास कौन सा है, बॉडी कॉन्शियस वाला। तो भल समझ मुझे मिल चुकी है कि ब्राह्मण माना मुझे सोल कॉन्शियस वाली लाइफ जीना है, परंतु वो आदत जो मेरी वर्षों की है, तो हम झूला झूलते रहते हैं, कभी सोल कॉन्शियस कभी बॉडी कॉन्शियस। अटेंशन रखने के बावजूद भी बाबा कई बार कहते हैं, जैसे मर्क्यूरी होती है ना, पारा होता है, वो बहुत फिसलता है, ऐसे ही हमारी कॉन्शियस फटाफट कब फिसल जाती है हमको पता ही नहीं चलता। हम अमृत वेले बहुत अच्छा अभ्यास करके दृढ़ प्रतिज्ञा भी कर लेंगे कि आज मैं सारा दिन सोल कॉन्शियस होकर रहूंगा। सारा दिन तो छोड़ो, अमृत वेले के बाद स्नान आदि किया, नाश्ता जो भी किया, वही बड़ी फिसल गए। तो क्या होता है, जो हमने पहले दिन भी आपको कहा कि आपको डायरेक्शन दिए थे कि मौन में रहना है, और हमने ये भी कहा था कि आप जो मौन तोड़ोगे वो जानबूझकर नहीं तोड़ने वाले हो, आदत बोलने की है, वो आपकी आदत आपको बोलने में लेके आ रही। ये नहीं कि आप पर्पसली यहाँ जो डायरेक्शन दिए हैं हम उसके खिलाफ जाना चाहते हैं, वो नहीं रहता किसी का भी, लेकिन आदत मुझसे करा लेती है। तो आदत भी कैसे बनी, सभी ब्राह्मणों को पता है ना, पहले दिन के लेसन में मन बुद्धि संस्कार का पूरा डिस्क्राइब किया जाता है कि आदत कैसे बनती है। तो अगर कोई एक आदत बनी है तो एक दूसरी आदत भी तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना। तो सोल कॉन्शियस की आदत क्रिएट करनी पड़ेगी, और जब भी कोई आदत क्रिएट करनी है तो उसमें कम से कम 21 दिन तो अटेंशन देना ही पड़ता है, और उसके बाद वो एक ऑटोमेटिक मोड जब ले लेता है, उसके बाद आपको अटेंटिवली नहीं सोचना पड़ता है कि मैं सोल कॉन्शियस में रहूं, लेकिन आप नेचुरल रहते हैं। हमेशा मैं एक उदाहरण देती हूँ, लट्टू किसने खेला है बचपन में, लट्टू किसने भौरा बोलते हैं ना, रस्सी भौरा उठाते हैं ना, हाँ। तो जो एक्सपर्ट होता है वो लट्टू उठाता है और रस्सी उसमें लपेटता है और यूं फेंकता, और इतना अच्छी से वो चलता है। जो छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा हर चीज देख देख कर सीखता है। वो देखता है, अरे जो भैया है, मामा, जो भी हो, अच्छा ऐसे कैसे किया, मुझे भी दो ना। वो भी उठाएगा, फिर वो भी देखेगा कैसे पकड़ा था, हाथ में ऐसे पकड़ा था, फिर ऐसे घुमाया था। लेकिन जो बड़े ने जिस प्रकार से प्रॉपरली सलीके से उसको लपेटा, उसे लपेटा जाएगा, लेकिन वो हार खाएगा, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, फिर यूं फेंकेगा, लेकिन जैसे उनका चला था वैसे नहीं चल रहा है, तो भी हार नहीं खाएगा, मुझे भी इनके जैसा चलाना है। लगा रहता है, लगा रहता है, और एक दिन आता है मामा जी को भी पीछे कर देता है, करता है नहीं करता है। फिर वो कहते हैं, अरे तू तो मेरे से भी आगे निकल गया। तो क्या किया बच्चे ने, सतत अभ्यास में लगा रहा। और इसीलिए बाबा भी कहते हैं, सतत अभ्यास कुछ दिनों का जरूरी है, और उसके बाद अब बच्चा बार बार ऐसे ऐसे नहीं करेगा, इधर आपसे बात भी करेगा और इधर, और यूं फेंकेगा, यूं चलेगा कि बात मत पूछो, और वो चलता रहेगा चलता रहेगा। बाद में उसकी स्पीड कम होती है। तो यही हमारी अभी वाली जो अभ्यास करेंगे, दादियों ने 14 साल तपस्या की कराची में, और जब यहां आए तो उनको रोज ये प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं आत्मा हूं, इसको आत्मा रूप में बात करूं, मुझे आत्मा से प्रेम और खुशी वाइब्रेट होनी चाहिए, नहीं। वो उनका एक नेचुरल बन गया था, क्योंकि अभ्यास सतत किया, ऑटोमेटिक मोड में आ गया, फिर नेचुरल हो रहा है। तो कुछ समय तो अभ्यास करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन था योग का, योग माना ही जोड़, और जोड़ माना विज्ञान की भाषा में, योग माना हम क्या कर रहे, आत्मा जुड़ रही है परमात्मा से, और आत्मा क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का मतलब क्या होता है, उसका स्वभाव क्या होता है, एनर्जी हमेशा वाइब्रेट होती है। तो जब वाइब्रेशन होता है, किस पैटर्न में वाइब्रेट हो रही है, उसके आधार से उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। अब मुझे परमात्मा के साथ जुड़ना है, तो साइंस कहता है टू सेम फ्रीक्वेंसीज गेट कनेक्टेड। अगर फ्रीक्वेंसी, दो वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी। तो परमात्मा से अगर मुझे कनेक्ट होना है, तो परमात्मा की फ्रीक्वेंसी तो सदा ही पॉजिटिव वाली है, प्यार वाली है, खुशी वाली है। ये तो इधर गड़बड़ है, कभी प्यार है तो कभी नफरत है, कभी शांति है तो कभी अशांति है, गड़बड़ तो इधर है। तो वो तो सतत उस फ्रीक्वेंसी में उसकी वेव्स निकल रही है, सर्वत्र फैली हुई है। अब मुझे अगर उससे कनेक्ट होना है, तो मेरा फर्ज है, इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसमें आने के बाद, अगर कोई कहे कि ब्रह्मा कुमारी से ना भगवान को याद करना सिखाती है, तो लोग कहेंगे क्या ब्रह्मा कुमारी जब तक हमारे जीवन में नहीं है, तो क्या हम भगवान को याद नहीं करते हैं क्या? सभी करते हैं। अगर आप शांति स्तंभ में गए होंगे और उस साइड से त्रिमूर्ति शिव भगवान आज पढ़ा होगा, तो उसमें लिखा है कि मुझे याद करने से पहले क्या करो, अपने को आत्मा समझो। ये नई चीज भगवान आकर सिखाते हैं, और आत्मा समझना माना ही मैं आत्मा ज्योति एनर्जी वाइब्रेट हो रही हूं। किस रूप में? तभी कहा कि अपने आप को बोलो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अर्थात उस एनर्जी को ऐसे वाइब्रेट होने दो जिसकी फ्रीक्वेंसी शांति की है, जिसकी फीलिंग शांति की है, और उस फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद शांति के सागर बाबा को याद करो। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, आप कनेक्ट हो गए, योग लग गया, वो हायर लेवल पे है, हम लोअर लेवल पे हैं, वो पावर हाउस है, हम पावर बैंक या बैटरी है, तो एनर्जी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? हायर से लोअर। तो न सिर्फ हमारा योग लग जाएगा, हम फुलफिल भी हो जाएंगे।
तो बहन जी ने बताया कि फ्रिक्वेंसी मैच जब तक नहीं होती है तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। संसार में भी सगाई होती है तो दोनों जन्मपत्रियां मिलानी पड़ती हैं। अगर ऊपर नीचे तो जिंदगी और लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो हमारी सब की जन्मपत्रियां बिगड़ी हुई हैं, इसलिए उतार चढ़ाव होता रहता है। तो उनका संशोधन करने के लिए बाबा आया हुआ है, तो देखना अपनी जन्मपत्री में कहां गड़बड़ी है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है दो। हाँ जी, हाउ टू कीप बुद्धि क्लियर फॉर प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। बुद्धि को कैसे क्लियर करें जो उसमें पर सही निर्णय दे सके।
एक ह्यूमन नेचर है जो हमारे लिए बहुत रुकावट डालता है, और वो है पर दर्शन। और क्या कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, तो पर दर्शन से हमारी बुद्धि में मैल आ जाती है, फिल्टर आ जाता है, और जो बात जैसे है फिर वो दिखती नहीं है सही तरह से। तो पर दर्शन का ऑपोजिट है स्वदर्शन, और स्वदर्शन और स्वदर्शन चक्रधारी, इन दोनों चीजों में फर्क है। स्वदर्शन मीन्स एक्चुअली हमें पिछले चार पांच साल से एक बात बार बार मन में आ रही है, और वो ये है कि जब तक हमने खुद को अच्छी तरह से नहीं जाना ना, तब तक खुदा भी नहीं मिल सकता। भले आपको बाबा का परिचय है, भले आपको फुल नॉलेज है, लेकिन खुद को जानना, खुद की असलियत को जानना, वो बहुत जरूरी है। और खुद की मीन्स स्व का दर्शन करें। और ये भी देखा गया है कि इवन हम आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ते हैं, ज्ञान को भी हम मोटे रूप से यूज करते हैं। समझ लिया मैं आत्मा हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, ये भी ऊपर ऊपर का हो सकता है, लेकिन डीप अपने आप को अच्छी तरह से जाने। मेरे इस, क्योंकि क्या है, मन है और सबकॉन्शियस माइंड, जैसे इंदिरा बहन ने शुरू में सुनाया, एक होता है मन, दूसरा होता है सबकॉन्शियस माइंड, मन और चित्त। चित्त में इस जन्म की पूरी मेमोरीज भरी हुई है, और सबसे ज्यादा हमारे डिस्क्रिमिनेशन पावर में, हमारे परखने की शक्ति में, हमारी बुद्धि में इंटरफेरेंस हमारे चित्त से आती है। तो जो चित्त में इस जन्म की जो मेमोरीज भरी हुई हैं, अगर हमने चित्त को साफ नहीं किया तो हमारी बुद्धि ठीक तरह से निर्णय नहीं ले सकती, और वो सफाई का तरीका भी दो मुख्य बातें हैं। एक तो जितनी ब्राह्मण लाइफ में जितने अच्छे अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के होने के बाद एक्चुअली हमें वो बात लिखनी चाहिए या दोबारा दोहरानी चाहिए अपने माइंड में, जिसको बाबन अव्यक्त बाप दादा ने एक बार फॉरनर्स को मिलते हुए कहा कि मधुबन में आप लोग आते हैं, मधुबन में अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, रियलाइजेशन भी होता है, लेकिन 2-3 हफ्ते के बाद रियलाइजेशन गायब, अच्छा अनुभव क्या था आपको याद ही नहीं है, इसलिए उस समय बाबा ने एक राय दी थी कि जैसे ही आपको कोई बात रियलाइज हो या कुछ अच्छा अनोखा अनुभव हो, कोई सूक्ष्म अनुभव, उसे लिख लिए, लिख कर नेक्स्ट डे उसको रिवाइज करो। तो बाबा ने दो शब्दों में कहा था, रियलाइज और रिवाइज। तो जितना हम रियलाइज और रिवाइज को स्ट्रॉन्ग करते हैं, उतनी हम नई मेमोरी को अंदर डाल रहे हैं, और नई मेमोरी को अंदर जब डालेंगे तो पुरानी मेमोरी अपने आप बाहर चली जाएगी, इससे सफाई होगी। जैसे कईयों को याद होगा, पुराने दिनों में सीडी हुआ करता था और सीडी के ऊपर हम रिकॉर्ड करते थे, या टेप होता था कैसेट, उस पर रिकॉर्डिंग करते थे, और अगर आपने गलती से उसके ऊपर कुछ रिकॉर्ड कर दिया तो जो पुराना वाला था मिट गया, गुम हो गया। तो ठीक इसी तरह पुरानी यादों को मिटाने के लिए अच्छी यादें कॉन्शियसली रिवाइज करनी पड़ेगी। एक बार किया अच्छा लगा, इनफ नहीं है, दोबारा दोबारा दोहराना। एक ये तरीका है खुद की सफाई करने की, चित्त को साफ करने की। दूसरा तरीका परदर्शन से स्वदर्शन में जाने के लिए, एक मेरा पाठ क्या है प्रश्न, काफी सिंपल लगता है लेकिन इसमें बहुत गहराई है। मेरा पाठ क्या है, जैसा इंदिरा बहन आप बता रहे थे ना कि कंपैरिजन, एक्चुअली कंपैरिजन से फ्री होने के लिए एक दूसरा भी तरीका है, और वो है जब मुझे अपना पाठ समझ में आ जाता है ना, तो मैं किसी और के पाठ को नहीं देखती हूँ। लेकिन औरों का पाठ ही तब हम देखते हैं, प्रदर्शन में तब ही हम जाते हैं जब हमें खुद के पाठ के बारे में अच्छी तरह से पता नहीं है। और खुद के पाठ को, ये भी आपने कहा कि हर आत्मा का यूनिक पाठ है, कोई और है ही नहीं दुनिया में जो मेरे जैसे है। लेकिन मैं अपने पाठ को कैसे समझ सकती हूँ, उसका भी बहुत सहज उपाय है। जो बात सामने आए, जो सेवा, कई बार दादी को लोग पूछते थे मेरे को समझ में नहीं आता मेरा रोल क्या है सेवा में, मेरा पाठ क्या है सेवा में, तो दादी हमेशा ये कहा करते थे कि जो बात सामने आए ना उसको करते चलो, तो आपको अपने आप आपका अपना पाठ का समझ में आ जाएगा। लेकिन कई बार हमें कुछ, जैसे किसी को, आई डोंट नो, बाय चांस किसी ने आपको बर्तन साफ करने की सेवा के लिए पूछा, अरे बहन जी हम लेट हो रहे हैं, ये आप कर देंगे प्लीज, समेट दो, सभी ने खाना खा लिया ये समेट दो, हम कहते हैं नहीं नहीं हमें तो कुछ और काम है। एक्चुअली वो बात उस समय आपके सामने आई है, आपके मार्ग में वो पाठ आया है, आपको ऑफर दी जा रही है, वो आप करो, जो आपके सामने आए, जो काम आपके सामने जिस समय आए करते चलो, तो आपको खुद ब खुद अपना पाठ समझ में आ जाएगा और उससे हम परदर्शन से छूट सकते हैं। सिंपल लगता है लेकिन गहरी बात है।
तो सभी की बुद्धि क्लियर होगी, लेकिन ये जो प्रश्न उत्तर सभी याद रहे, तो अभी ये तीन है, क्या करें इनका पूरा कर दें। तो ये प्रश्न उत्तर अभी आप बाबा के कमरे में बैठ जाना, जब तक नहीं मिले तो उठना नहीं उधर से, है ना। तो सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा भी देने के लिए बाध्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि जी
ये
बताइए।
हाँ, विषय बहुत गहरा है और कल एक सेशन इसी पे हम कर देंगे, तो ये क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे हम फिनिश कर सकते हैं। कल का एक सेशन हम इसी पर रखेंगे, ठीक है? वो सुबह हम सुनाते हैं, बाकी तो जो यहाँ पर मेडिटेशन सेशन कर रहे हैं, कल तीसरा सेशन रहेगा। पहले दिन आत्मा का लेसन किया, दूसरे दिन परमात्मा का, तीसरे दिन कनेक्शन दोनों का चाहिए। तो आपका कनेक्शन वाला लेसन कराने के लिए हमारे अनुभवी महारथी भाई सुशील भाई जी आपका कल का लेसन कराएंगे। बाकी तो पूरी की दिनचर्या आपको बाद में हम सुनाते सेशन होने के बाद, और जो मुरली क्लास में जाते हैं उनको वहां सुना दी जाती है। इसलिए अभी जो सेशन है हमको वहीं पर स्टिक करना है।
तो लास्ट में एक मिनट, तो एक बार क्या हुआ, माना बाबा से मदद कैसे लेनी होती है। तो एक छोटा बच्चा था और बचपन से उसको आदत थी कि रात को बिस्तर में पेशाब कर देता था वो। तो उसके माँ बाप बहुत तंग हो गए, बहुत डॉक्टरों को दिखाया, ठीक नहीं हुआ, बड़ा भी हो गया, सातवीं क्लास तक पहुंच गया वो, लेकिन बीमारी उसकी गई नहीं। आखिर में माँ बाप भी हार के थक गए। तो रात को उसने बाबा को बोला, अगर सवेरे तक ये बाथरूम बंद नहीं हुआ तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, और उसके बाद वो ठीक ही हो गया एकदम। तो ये आप करके देख लेना। अभिषेक जी, अभी बाबा की याद में बैठेंगे दो मिनट। मना अपनी समस्याएं बाबा को बता देना।